नमस्तुभ्यं वंदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जोलो द्वादसांग मई जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, रुचि रखते हैं, ये आपके पुण्य का प्रतीक है। ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। चलिए छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। रोचक होने के साथ साथ रोमांचक भी है। रोमांचक इसलिए है कि रोम रोम सिहर जाता है जब जीव की या स्वयं की समझो वास्तविक स्थिति को समझा जाता है तो रोम रोम सिहर जाता है और सिहरना चाहिए। क्योंकि यदि संसार से डर लगता है, संसार के दुखों से डर लगता है, तो संवेग भावना भा करके और अपने संसार को कम करने के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। वही सार छह ढाला के अंदर हम प्राप्त करते हैं। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय का शुभारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोग संभार के। मोक्ष को प्राप्त कराने वाली वीत राग विज्ञान था को नमन करते हुए विषय पर आती हूँ। आज हमारा श्लोक नंबर 4 है। हमने जाना कि संसार के जीवों की क्या चाह रहती है। दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं और गुरु की वाणी को जीवन में यथार्थ उतारने का प्रयास करने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है। हे भव्यात्मन, तेरे संसार भ्रमण की कथा बहुत लंबी है और जहां पर अनंत काल निगोद के अंदर निकाला गया, ऐसी एकेंद्री की निगोद पर्याय को पा करके बड़ी मुश्किल से आगे का सफर तय होता है। चतुर्थ चौपाई के माध्यम से जानेंगे निगोद के दुख और निगोद से निकलकर जो त्रस्त पर्याय प्राप्त होती हैं उनके बारे में। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। क्या कहते हैं, इस जीव ने एक श्वास में निगोद के अंदर क्या किया है। एक श्वास में 18 बार यानी जो मानव की श्वास है उतनी देर की श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। जन्म्यो मर्यो बहु भर्यो दुख भार, जन्म और मरण करते हुए बहुत भारी दुखों को सहन किया है। आपको समझना है कि हमने बताया था निगोद दो तरह का होता है। एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो नित्य निगोद कहाँ है? सातवें नरक के नीचे नित्य निगोद, जहां पर जीव रहते हैं वे तो समझो साधारण पर्याय में, साधारण वनस्पति की पर्याय कह ले हम उनको। तो जहां से ये जीव ना अब तक निकला है और ना आगे निकलेगा, ऐसा नित्य निगोद का स्थान। और जहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव हमेशा निकलते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो भी नित्य निगोद का स्थान कभी भी खाली नहीं होता। वहां अनंत निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के महान दुखों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चिंतन किया, खोज किया, तो पता चला कि श्वास कौन सी है। देखो श्वास भी दो तरह की है, एक नाड़ी का श्वास होता है और एक उदर का श्वास होता है। जब हम नमोकार महामंत्र का उच्चारण श्वासोच्छ्वास के साथ करते हैं, तो एक बार श्वास लेना उदर के सहारे से, नाक के सहारे से, और एक बार श्वास को छोड़ना, ये एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। लेकिन यहाँ पर नाड़ी जिससे पल्स मापते हैं, पहले वैद्य लोग नाड़ी से ही नापते थे, आपकी नाड़ी कैसी चल रही है। आजकल मशीनें आ गई, उंगली में लगाई जाती है और पल्स बता देती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य की पल्स जब नापते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 72 से 75 पल्स अगर आई हैं, तो उसको उसकी नाड़ी स्वस्थ मानी जाती है। और अगर इससे ज्यादा पल्स हैं, तो उसे थोड़ा एबनॉर्मल कहा जाता है कि भाई जरूर कोई बात है कि आज आपकी पल्स तेज चल रही हैं, या किसी की पल्स बहुत धीमी चलने लग जाती हैं, माने उसके अंदर किसी तरह की कोई ऐसी कमी है, कमजोरी है, कि जो बराबर पल्स को नहीं प्रकट होने देती है। और ऐसी स्थिति में जीव को उस समय अस्वस्थ, एबनॉर्मल समझा जाता है, कम पल्स में भी और ज्यादा में भी। तो उस पल्स को, उस उन उच्छ्वासों को जो नापा गया, तो एक मुहूर्त में 3773 उच्छ्वास आए, यानी स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की पल्स जो उच्छ्वास शब्द से कही गई है, वह 48 मिनट के अंदर 3773 बार आई। तब 1 मिनट के अंदर उसको जब मापा, तो 3773 को 48 से भाग दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, 78.60 ये पल्स की संख्या प्राप्त होती है। यानी कि एक मुहूर्त हुआ 3773 उच्छ्वास का, एक मुहूर्त हुआ पल्स से नापे उच्छ्वास या उच्छ्वास से नापे पल्स, तो कुल मिलाकर के उच्छ्वास जो है नाड़ी की पल्स से नापी गई। और इतने उच्छ्वास में एक उच्छ्वास जितना हुआ, एक बार ऐसे नाड़ी की गई, एक बार फड़की नाड़ी नाड़ी, और उतनी देर में निगोदिया जीव ने 18 बार जन्म मरण किया। सोचो कि कैसा जीवन है, और ऐसे जीवन को हम सब ने भी प्राप्त किया। इसलिए मैंने कहा कि रोचक भी है, रोमांचक भी है, जिससे रोम रोम सिहर जाए, और सिहर जाना चाहिए। ऐसी पर्यायों में जा करके हमने दुख उठाए हैं, और जहां किसी तरह का कोई संबोधन नहीं है, किसी प्रकार से कोई पुण्य की क्रिया नहीं है, जब स्वयं में ही पाप का भार हल्का होगा, तब जा करके वे वहां से निकल करके, और फिर निकस भूमि जल पावक भयो। जब निगोदिया जीव वहां से निकलेगा, तो कहां पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति का एक में प्रत्येक वनस्पति कोई पेड़ पौधे हो गए, साधारण वनस्पति की पर्याय में तो है ही समझो, और प्रत्येक वनस्पति की पर्याय में आ जाते हैं तो वह भी दुखदाई ही होती है, उसमें भी किसी तरह का कोई चिंतन कोई संबोधन तो रहता नहीं है। इसलिए ही भव्य प्राणी जानना है कि इस जीव ने निगोद में एक श्वास मात्र काल में 18 बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया, इस प्रकार अनेक दुखों का भार सहन करता रहा और निगोद से निकल करके ये जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति का ही जीव हो गया। ये पढ़ करके क्यों सुनाते हैं? भगवान को सुनाते हैं या एक दूसरे को सुनाते हैं? नहीं, ये आत्म संबोधन के लिए चीजें हैं। क्या हम आत्म संबोधन के लिए पढ़ें? मैंने देखा है बचपन में भी घर के अंदर छेड़ाला पढ़ा जाता था। हमारी माँ हमारी दादियां क्यों पढ़ती थी कि घर में सब कुछ करते हुए भी अगर वैराग्य का चिंतन करना है तो एक छेड़ाला और एक आलोचना पाठ, हमने इन दो पाठों को पढ़ते बहुत देखा है। जय लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और आज भी हम देखते हैं अनेक लोग जब किसी दुख की स्थिति में किसी विषम परिस्थिति में कोई विचलित होने की दशा में आते हैं तो छेड़ाला की इन पंक्तियों से उन्हें संबोधन दिया जाता है। हमारी आरिका रत्नमती माता जी थी गृहस्थ अवस्था की हमारी माँ, जिन्होंने दीक्षा धारण की, छेड़ाला को सुने बिना कभी वो सोती नहीं थी। और हमारे संघ की बालिका बीना बहन जी जो आज संघ संचालिका है रोज सुनाती थी। आज कल भी मैंने पूछा कि बीना तुम्हें छड़ाला याद है? बोली माता एक एक शब्द याद है। और मैं रत्नमती माता को सुनाया करती थी, सुनाया ना खूब तुमने, तो ऐसे छड़ाला को मैं क्यों सुनती थी? वे तो आरिका बन गई थी, बड़े बड़े पाठ पढ़ती थी, प्रतिक्रमण सामायिक करती थी, लेकिन इसको पढ़ने और सुनने का सार यही होता था कि मन के अंदर वैराग्य भाव आए कि हे आत्मन तूने कितनी बार ऐसे जन्म मरण को करके अपनी पर्यायों को व्यतीत किया है। तो मैंने एक गीत में उसे लिखा, हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। मन में यही भावना है क्या? मनुष्य का जन्म पाया है तो निगोद में वापस ना जाएं। हे भगवान हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। केवल जन्म मरण में ही पर्याय बिताए, कुछ पुण्य का संयोग त्रस पर्याय अब पाए, शक्ति मिले चिंतन करे आत्म मगन होके, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। अगर हमने मनुष्य जन्म को सार्थक नहीं किया, त्रस पर्याय प्राप्त करने के बाद जो अति दुर्लभ मनुष्य गति मिली है उसको सार्थक नहीं किया तो पुनः कहीं निगोद में जाना पड़ गया तो सोचो कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, भगवान जाने। केवल ज्ञान ही जान सकते हैं त्रैकालिक दृष्टा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। और जब जब दुखों को भोगा तो सोचा अब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, अब हमें मिल गई है हम नहीं करेंगे, इतना सोचने के बाद भी मनुष्य अपने अनादिकालीन अविद्या के संस्कार बस पुनः पुनः जब भी कोई स्थितियां आती हैं फिर वही काम शुरू कर देता है, फिर वही पाप कमाना शुरू कर देता है। कहाँ सोचते हैं कि हम ज्ञानावरण कर्म का बंद कर रहे हैं, दूसरे के ज्ञान को रोक रहे हैं, हम इन्हें नहीं बताते हैं, या दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, या किसी की हिंसा करते हैं, या किसी की निंदा करते हैं, कहाँ सोचता है। तो ऐसे जीवों के लिए बार बार ये पंक्तियां अपने लिए संबोधन प्रदान करती हैं। स्वर्गों के सुख भोगे पशु की योनि भी पाई, नरकों में रो रो कर वहां की आयु बिताई। नर्तन प्रभु सार्थक करूं अब शांत मन होके, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। निगोद आप नहीं लौटेंगे, कब नहीं लौटेंगे, अगर अपना सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहा। भगवान ऋषभदेव ने 10 भव पूर्व राजा महाबल की पर्याय में ऐसा सम्यक दर्शन, दृढ़ सम्यक दर्शन अपने एक मंत्री से प्राप्त किया। 4 मंत्रियों में 3 मंत्री उसे न जाने क्या क्या संसार भ्रमण की बातें बता रहे थे, लेकिन एक स्वयं बुद्ध मंत्री ने उन राजा को बताया कि राजन, पुण्य के प्रताप से आपको राजा की पर्याय मिली है, राजा का पद मिला है। यहाँ पर पाप संचित नहीं करना है, यहाँ पुण्य को एकत्रित करना है। और राजा ने सपने में देखा था कि 3 मंत्री मुझे कीचड़ में धकेल रहे हैं और 1 मंत्री मुझे कीचड़ से निकाल करके स्वच्छता में ले जा रहा है। वही हुआ, स्वप्न का फल साकार हुआ। एक निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि स्वयं बुद्ध मंत्री, शीघ्र जाओ, तुम्हारा राजा तुम्हारे इंतजार कर रहा है। और कुछ मंत्री उसे पाप की ओर धकेल रहे हैं। उसने जा करके राजा को सम्यक दर्शन में दृढ़ किया, और वो सम्यक दर्शन ललितांग देव की पर्याय में भी जाकर वहां दृढ़ बना रहा। आगे जाकर उसी सम्यक दर्शन की दृढ़ता से उन्होंने 10वें भव में भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर का पद प्राप्त कर लिया। अब जिन्होंने मिथ्यात्व की ओर, गलत मार्ग की ओर धकेलना चाहता था, उनमें से 2 जने तो नरक में चले गए और एक बेचारा निगोद में चला गया। नहीं कहीं दिख रहा था तो केवल ज्ञानी मुनिराज से पूछा, बताया कि मिथ्यात्व के प्रभाव से निगोद में चला गया, अब अपने आप ही पाप हल्का होगा तो कभी त्रस पर्याय मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। ऐसे सब बातों का चिंतन करके ही मनुष्य कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। कैसे मैं अपनी आत्मा को संसार समुद्र से निकाल दूं और दूसरे जीवों को भी मैं संसार से निकाल करके मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर ले आऊं, भेद विज्ञान उत्पन्न करा दूं, उसे पापों से मुक्त करा दूं। यही भावना जब रहती है, स्वयं की दर्शन विशुद्धि और पर को भी सम्यक दर्शन में दृढ़ करना, इससे अधिक कोई दर्शन विशुद्धि भावना नहीं हो सकती। ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना आज भी पंचम काल में लोग भाते हैं और 16 कारण के व्रतों को कर करके दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रते सनति चार आदि भावनाओं को भाते हैं। आज भी चैत्र कृष्ण का 16 कारण, चैत्र मास का 16 कारण पर्व चल रहा है। रोजाना आपको पूज्य माता जी एक एक मंत्र का जाप कराती हैं। ये क्या है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सहज में नहीं होता, और आज तो हो ही नहीं रहा क्योंकि न तीर्थंकर भगवान है साक्षात और ना वैसी भावनाएं भाने वाला कोई, लेकिन फिर भी उन भावनाओं की पूजन की जाती है, उन भावनाओं को भाया जाता है, व्रत भी करते हैं शक्ति के अनुसार एक आसन या उपवास से, तो इसलिए कि आगे आने वाले काल में, चतुर्थ काल में हमें ऐसा मौका, ऐसा अवसर मिल जाए, पुण्य मिल जाए कि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकें। तो भव्यात्माओं, यहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की जो बात कही है वो नाड़ी के श्वासोच्छ्वास से समझना, नाड़ी के उच्छ्वासों से, कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर नाड़ी की पल्स जो चलती हैं उनकी गिनती की गई तो 3773 उच्छ्वास आए, और उनमें से एक उच्छ्वास के अंदर ये जीव 18 बार जन्म मरण कर रहा है। ऐसी स्थिति हमने भी प्राप्त की है, आगे प्राप्त ना करना पड़े, ना हमें स्थावर योनि में जाना पड़े, ना हमें निगोद में जाना पड़े। अब जो काल निकल गया वो निकल गया, लेकिन आगे ऐसा वैराग्य रखें संसार के अंदर भी रह करके, ऐसा भेद विज्ञान कुछ देर के लिए सामायिक में चिंतन करते हुए इन पंक्तियों को जीवन में साकार करें। यही बात पंडित दौलत राम जी ने जो कहा, उन्होंने गुरु की विशेषता बताते हुए कि शिक्षा मैं नहीं दे रहा, ये गुरु की शिक्षा है। जो सच्चे गुरु होते हैं वे करुणा पूर्वक संसार के प्राणियों को ऐसी शिक्षा दे करके और संसार से निकलने का पुरुषार्थ कराते हैं, स्वयं भी करते हैं। तो आज इस चौपाई का, इस पद्य का यही सार हमें समझना है कि हम सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, ताकि कभी भी इन तुच्छ योनियों में हमें नहीं जाना पड़ेगा और हम आगे निश्चित रूप से तीर्थंकर आदि बनने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो उन गुरुओं की महिमा जानकर हम गुरु पूजा की ओर अब चल